نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے رمضان کا بابرکت مہینہ دیکھا اور اپنی اپنی سب نے کوشش کی کہ اس میں نیکیاں کمائیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب اعمال کو قبول فرما لے جو بھی ہم نے ٹوٹے پھوٹے کیے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں ذی الحجہ کی طرف. ذی الحجہ تقریباً اب سے 2 ہفتے بعد شروع ہونے والا ہے. یہ وہ ایام آنے والے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر, دنیا کے تمام دنوں میں سے بہترین دن یہ 10 دن ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ جب رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے تو بہت سارے درس ہوتے ہیں, بہت اس کی دھوم ہوتی ہے, بہت چرچا ہوتا ہے, ہر ایک کو پتہ ہے رمضان کے بارے میں. ہم اپنی باقی ایکٹیویٹیز پیچھے کر دیتے ہیں, جی رمضان شروع ہونے والا ہے, رمضان میں کوئی پارٹیاں نہیں رکھتے, کوئی سیرے نہیں کرتے, کوئی یہ سب پیچھے کر دیتے, نہیں رمضان ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ یہ 10 دن ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ دن ہیں کتنے زبردست, کتنے قیمتی. افضل ایام دنیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بیسٹ ہیں دنیا کے دنوں میں سے, تو پھر سوچیں کہ اس سے بڑھ کے تو کوئی دن ہی نہیں ہے. اور کس چیز کے لیے بیسٹ ہیں؟ کوئی دن ہوتے ہیں مثلاً کوئی کام کرنے کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں, کوئی دن خوشی بنانے کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں, کوئی یہ کس چیز کے لیے سب سے اچھے ہیں, کس چیز کے لیے بیسٹ ہیں؟ نیکی کرنے کے لیے بیسٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب ہو. یا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین دن یہ 10 دن ہیں. اور میں اس کو ایسے کہوں گی, آپ کو لوگ کہتے ہوں گے ذی الحجہ کے دن بڑے خوبصورت دن, بیسٹ ڈیز, میں آپ کو اس کو ایسے بیان کروں گی کہ دیکھیں ہم سب کو اللہ سے محبت ہے نا, ٹھیک ہے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ سے محبت ہے تو اس ذات کو جس چیز سے محبت ہوگی لا محالہ ہمیں اس سے محبت ہوگی, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دن محبوب اور ہمیں اللہ محبوب. تو اب میں ان دنوں کا نام پتہ ہے کیا رکھوں گی؟ محبوب کے محبوب دن, محبوب کے محبوب دن. جو دن محبوب کو محبوب ہیں وہ کیسے نہ مجھے محبوب ہو, وہ دن تو مجھے سب سے پیارے لگیں گے. اب کیا یہ دن رمضان سے بھی زیادہ پیارے ہیں, زیادہ اچھے ہیں؟ بتائیے, آپ لوگ بتائیں, کیا یہ رمضان سے بھی زیادہ افضل دن ہے؟ اچھا, رمضان سے بھی زیادہ افضل ہے, کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب دن ہے, بالکل صحیح. اچھا, اب آپ کو حافظ ابن حجر کی ایک بات بتاتی ہوں کہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ دن رمضان سے بھی زیادہ افضل دن ہے. کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں نماز, روزہ, صدقہ, حج, قربانی, یہ سب چیزیں اکٹھی ہو گئیں. رمضان میں ایسا نہیں ہے. رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں وہ بیسٹ ہیں اور دنوں میں یہ دن بیسٹ ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ دنوں میں رمضان کے دن بیسٹ نہیں, دنوں میں یہ دن بیسٹ ہیں. اور راتوں میں وہ 10 راتیں بیسٹ ہیں. ان راتوں میں ہم نے کیا کیا؟ جاگ جاگ کے گزاریں, دعائیں کر کے گزاریں, باتیں کر کے گزاریں. یہ 10 دن بھی اسی طرح گزارنے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں دیکھیں یہ ساری چیزیں فرمایا مل گئیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک پلر حج ان دنوں میں رکھ دیا. آپ سوچیں یہ کیسے پیارے دن ہوں گے پھر, کہ اللہ نے ان دنوں کا انتخاب کیا اس عبادت کے لیے, حج کی عبادت کے لیے. اور قربانی, آپ سارا سال بکرا ذبح کرتے رہیں, ہر دن کرتے رہیں, وہ قربانی نہیں کہلائے گا جب تک کہ اس دن نہ کیا جائے جو یوم النہر ہے. बाकी दिनों में आप करते हैं, आप अकीके के लिए करते हैं, आप सदके के लिए करते हैं, या आप वैसे खाने के लिए करते हैं, कोई भी कुर्बानी नहीं कहलाता, कोई इबादत नहीं है। याद रखें, सदका भी इबादत नहीं, वो आप अपने ऊपर से मुसीबतें टालने के लिए, इसके लिए करते हैं। जो कुर्बानी है ना, वो सिर्फ इन दिनों के अंदर है जो किया जाए, उसके अलावा नहीं कुर्बानी। तो ये दिन इतने प्यारे दिन हैं। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये अफजल तरीन दिन है, और अल्लाह ताला के हाँ कोई दिन में की गई नेकी इन दिनों से ज़्यादा फजीलत वाली नहीं है, तो अब सहाबा को एक ख्याल आया, तो उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह जिहाद भी नहीं? जाहिर है, एक जेन में आता है कि जिहाद इतना अफजल अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद भी नहीं, सिवाय उस मुजाहिद के कि जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान भी लुटा दे, माल भी लुटा दे, बिल्कुल खाली हाथ हो जाए, सिवाय उसके वो हो सकता है जो इसके बराबर हो जाए, वरना कोई और दिन में की गई नेकी इस दिनों में की गई नेकी से ज़्यादा बढ़ के नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? इन दिनों में रखा गया रोज़ा वो अल्लाह को ज़्यादा महबूब है बजाय आप किसी और दिन में साल में रोज़ा रखें। इन दिनों में पढ़ी गई नमाज अल्लाह ताला को जितनी महबूब है, पूरे साल में किसी दिन आप नमाज पढ़ लेंगे उतनी महबूब नहीं है। इन दिनों में पढ़ी गई तहज्जुद अल्लाह ताला को इतनी महबूब है कि पूरे साल में आप किसी रात में तहज्जुद पढ़े उतनी महबूब नहीं है। इन दिनों में किया गया जिक्र अल्लाह को इतना महबूब है कि किसी और दिनों में किया गया जिक्र इतना महबूब नहीं है। अल्लाह ताला ने इन दिनों की कसम कुरान में खाई है, फरमाया वल फज्र व लयालिन अशर। ये जो लयालिन अशर फरमाया ना, दस रातों की कसम, वो ये असल में ये दिन है ज़िलहज्जा के दिन। तो जिसकी कसम अल्लाह ताला खा लें, फिर वो चीज़ कितनी ज़्यादा इसका मतलब अजमत वाली है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की कसम खा ली वो तो फजीलत वाली हुई ना। तो इन दस दिनों की कसम अल्लाह पाक ने अपने कुरान में खा ली। जैसे रमज़ान की फजीलत किस वजह से है सबसे ज़्यादा? कुरान की वजह से, शाबाश। इसी तरह इन दस दिनों की फजीलत किस वजह से? हज की वजह से। मगर जो लोग हज पे नहीं जा सकते, क्या वो सारे महरूम हैं अजर से? नहीं, अल्लाह ताला ने उनके लिए भी रास्ता रखा है। वो रहमान और रहीम रब है। कितने लोग आप में से हैं जो हज पे जा रहे हैं इस दफ़ा? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो नहीं जा रहे उनको फिर एक दिल में रहती है ये कसक के हम नहीं जा रहे, और अब इसको कैसे पूरा किया जाए, कैसे इसकी कॉम्पेंसेशन की जाए, क्या कोई तरीका है? तो याद रखें, जो हज पे नहीं जा रहा उसके लिए इन दिनों में सबसे बड़ी चीज़ जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसनद अहमद की रिवायत में है कि इन दिनों में क्या करो, कसरत से बा आवाज़ बुलंद, सबसे पहले क्या, कसरत से यानी बहुत ज़्यादा और बुलंद आवाज़ में क्या करना है? तकबीर, तहलील, तहमीद। तकबीर, तहलील, तहमीद, यानी तकबीरात जो हम कहते हैं ना, इन दिनों में ये ख़ास अमल है जो सुन्नत, आज बिल्कुल लोगों को पता ही नहीं कि ये भी एक सुन्नत है। तकबीर, इस तकबीर में कैसे हम ये तकबीरात पढ़ेंगे, बहुत सारी तकबीरात हैं, मगर एक तकबीर की आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, और आप मेरे सामने अभी वो पढ़ेंगे कि वहाँ दूसरे हॉल तक उनको पता चल जाए कि यहाँ पे दर्स हो रहा है। ठीक है, इतनी आवाज़ होनी चाहिए। तीन दफ़ा हम कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चौथी दफ़ा हम कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर दो दफ़ा कहेंगे फिर से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फिर वलिल्लाहिल्हम। चले मेरे साथ बोले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन तकबीर है जो कि कही जाती है। और अगर आपको ये याद है ये कह लें, और कोई आप तकबीरात और भी, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, व सुबहानअल्लाह बुकरतम वसीला, वो भी पढ़ सकते हैं। तो इन दिनों में आप कोई तरह की भी तकबीरात वो पढ़ना शुरू कर दें, और आवाज़ें बुलंद पढ़ें। अगर आपके घर में कोई गैर महरम नहीं है तो आप वो आप भी घर में बुलंद आवाज़ से पढ़ सकती हैं। देखें, सईद बिन जुबैर के बारे में आता है कि वो इन दस दिनों में अपने आप को इबादत में इतना मशगूल करते थे, इतना खपा देते थे कि ऐसे लगता था इनको कोई और काम ही नहीं है। हम सोचते हैं लेकिन हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारे पास जॉब भी है, हमारे पास घर के भी धंधे हैं, बच्चे भी हैं। तो ठीक है, कोई आप उसे अगर छुट्टी नहीं ले सकते तो तकबीरात पढ़ने में तो कोई भी छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर के काम करते हुए भी तकबीरात पढ़ सकते हैं, और जब हम बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे तो क्या होगा, बच्चे भी सुनेंगे। आप ये जो हमने आज बातें सुननी है ना, ये हमने बच्चों को जाकर ज़रूर बतानी है, उनके साथ शेयर करना है, ठीक है। तो जब वो सुनेंगे तो उनको भी याद आ जाएगा। जब हम थक जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम उस पर ऑन कर देंगे, अपने फ़ोन पे या कंप्यूटर पे ऑन कर देंगे, घर में गूंजती रहें, क्योंकि हमें ज़ाहिर भूल भी जाएगा और हम थक भी जाएंगे। तो उस पर ऑन कर दें, फिर लामहाला आप देखिएगा कि जब चल रही होंगी उसके ऊपर तो आपके खुद ब खुद ज़ुबान पे आ जाएंगे। 10वीं तारीख तक आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी चलाने की। अगर आपने वाकई ऐसा किया कि सारा दिन वो एक लूप में लगा दिया और चलती रही, तो इंशाल्लाह आपकी ज़ुबान पे जारी होंगी। देखें, हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वो क्या किया करते थे, बाज़ारों में निकल जाते थे, बाज़ारों में निकल जाते थे और ऊंची ऊंची आवाज़ में तकबीरात पढ़ते थे, और बाज़ार वाले सुनते थे तो वो भी पढ़ने लगते थे। सुभान अल्लाह। आज के वक्त में कोई शायद ऐसा करे तो कोई कहेगा कि ये क्या पागल ही हो गया शायद, हाँ, या पता नहीं शो ऑफ़ कर रहा है अपनी बड़ी तकबीरात सुना सुना के। हालांकि देखें, अगर ये शो ऑफ होती तो वो सहाबा कभी ना करते, हाँ। तो इसको शो ऑफ ना समझिएगा, आप पढ़ने लगे ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। आप किसी मजलिस में जाएँ, वहाँ पर ये बात शेयर करें, उनको भी बताएं कि चलो तकबीरात पढ़ते हैं। और इब्ने उमर के बारे में आता है, जब वो मीना में होते थे, मीना के दिनों में ये तकबीरात हैं, ये सारे ज़ाहिर है 8 तारीख से मीना चले जाते हैं, तो वो वहाँ पे इतनी ऊंची तकबीरात पढ़ते थे कि मस्जिद तक उनकी तकबीरात की आवाज़ जाती थी। तो मस्जिद वाले पढ़ने लगते थे, जब मस्जिद वाले पढ़ते थे तो उनकी आवाज़ बाज़ार तक जाती थी, बाज़ार वाले पढ़ने लगते थे, और जब बाज़ार वाले भी पढ़ने लगते थे तो पूरा मीना तकबीरात से गूंज जाता था। सुभान अल्लाह, वो क्या समा होगा, हमने तो कभी आज तक सुना ही नहीं ऐसा। हमने तो ये मंज़र अपने घरों तक में भी नहीं देखा कि हमारे घर पूरे गूंज जाएं तकबीरात से। अल्लाह ताला हमारे घरों को ऐसा बना दे कि हमारे घरों में तकबीरात गूंज जाए। चलो मीना नहीं हम कर सकते तकबीरात, तो हमारे अपने घर तो इतनी सी जगह तो हमारी अपनी कैपेसिटी में है कि हम ये कर सकें। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा करेंगे, सारा दिन करें, इन 10 दिनों में। मतलब ब्रेक तो ज़ाहिर है वही, जैसे मैंने बताया इंसान थक जाता है। अब आप जितना भी कर सकें, यानी ज़ुबान तर रहे इससे, तो देखें इसका फ़ायदा कितना होगा कि आप गुनाहों से बचे रहेंगे, बेकार बातों से बचे रहेंगे, लघवियात से बचे रहेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी एक हदीस के कितनी ये लघवियात से बचना आपके लिए कितना बड़ा दर्जा आपको पहुँचा सकता है इस तक। अच्छा, फिर इन दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था रोज़ा रखने का, कि 9 दिन रोज़ा रखते थे। ज़ाहिर 10वें दिन तो ईद है, उस दिन नहीं रखना। तो इन 9 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रोज़ा रखने का था। तो हमने पहली से, यानी जब हमने अभी से नियत कर लेनी कि इंशाल्लाह ताला हम ये 9 रोज़े रखेंगे, क्योंकि रोज़े में क्या होता है कि जितनी देर आप रोज़े में, आप इबादत में, आप इबादत में है ना, आप कुछ नहीं भी कर रहे, आप सो भी रहे, इबादत है, आप कुछ भी नहीं बोल रहे, इबादत है, इबादत आपकी चल रही। तो अब जाहिर है इन दिनों में हमने कोई अच्छा अमल करना है तो रोज़ा तो मुफ्त समझ लें, इबादत है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे 21 तारीख से तकरीबन शुरू हो जाएंगे ये दिन, तो फिर हम रोज़ा अभी से उसकी नियत बांध लें। ख़ास तौर पे आरफा के दिन का रोज़ा वो रखना बहुत फजीलत का हामिल है। आरफा का दिन ही बड़ा फजीलत वाला दिन है। आरफा के दिन की आपको पता है कि क्या फजीलत है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? आई विश के मेरे पास आज प्राइजेज होते तो इस पे क्विज पे प्राइजेज दिए जाते। मग़फ़िरत होती है उस दिन और दुआएं कबूल होती हैं। अच्छा, और अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। अच्छा, और अरफा का दिन तो बहुत बड़ा दिन है, आपको नहीं पता, बख्शिश का दिन है, आग से निजात का दिन है जी। सही सही। अच्छा, मैं आपको ना 4 चीज़ें बताती हूँ, आपने याद रखनी है और शेयर करनी है, ठीक है। ये 4 चीज़ें याद रखनी है आपने अरफा के दिन की। नंबर 1 चीज़ है कि ये इतना ज़बरदस्त दिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन अल्लाह ताला बंदों को जहन्नुम से उतने आज़ादी ना दे जितनी के अरफा के दिन अल्लाह ताला बंदों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाते। यानी मैक्सिमम जो बंदों को आज़ादी मिलती है ना जहन्नुम से, वो उस दिन परवाने मिल जाते हैं ये जहन्नुम से आज़ाद। या अल्लाह हमारा नाम उनमें शामिल कर देना कि अरफा के दिन इस दफ़ा के अल्लाह जिनको तू जहन्नुम से आज़ाद कर दे, अल्लाह हमारा नाम उनमें शामिल कर देना। तो कोई दिन इस दिन से बढ़ के नहीं है जिस दिन आज़ादी मिले। तो ये कितना बड़ा दिन हुआ। जो लोग अरफा के मैदान में जमा होते हैं तो उनके बारे में आता है सुभान अल्लाह के अल्लाह ताला, हदीस में आता है अल्लाह ताला उनसे करीब हो जाता है। कैसे करीब होता है ये हम नहीं जानते और ना हम इसकी तशरीह कर सकते, बस हम ये कह सकते हैं जैसे उसकी शान के लायक है। बस अल्लाह ताला उस दिन करीब हो जाता है और अल्लाह ताला फरिश्तों पे फ़ख्र करता है और फरमाता है देखो मेरे बंदों को कैसे मैले कुचैले होके यहाँ पे आए हुए, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ ये क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये बख्शिश चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम गवाह रहना मैंने इनको बख्श दिया, अब इनके गुनाह चाहे बारिश के कतरों के बराबर हों या दरख्तों के पत्तों के बराबर हों अल्लाह ताला उनको बख्श देता है। इतने खुशकिस्मत हैं वो। लेकिन अब जो घर में बैठे हुए अब हम क्या करें, हर साल तो कोई भी नहीं जा सकता हज पे, कई सारी ज़िंदगी नहीं जा सकते, तो क्या करें। उस दिन का रोज़ा रखने वाले के साथ अल्लाह ताला का एक उसको एक बशारत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला एक पिछले साल के और एक अगले साल के गुनाहों को बख्श देगा उस एक दिन का रोज़ा रखने का। और मैं सोच रही थी, कैलकुलेशन कर रही थी, तो मैंने कहा कितना का हमारा रोज़ा होगा, 14 घंटे का, 16 घंटे का रोज़ा सिर्फ। उसके बदले कितने दिन हैं, 365 डेज एक साल के, 365 दूसरे साल के, कितने दिन हैं जिनकी हमारी बख्शिश हो जाएगी सिर्फ इतने से घंटे का रोज़ा रखने पे। कितना फजीलत वाला ये रोज़ा है कि एक पिछले साल के गुना, और ये देखें पिछला साल हमारा ये एंड हो रहा है, ज़ुलहज आखिरी महीना है, 21 दिन रह जाएंगे उसके बाद, यानी पूरे साल की हमारी जो कारकर्दगी है उसमें से गुना वॉश हो गए। और आने वाला साल जिसके हमें अभी पता ही नहीं हमने करना क्या है, मेरे रब की रहमत इतनी है कि वो फरमाता है ये एक दिन का रोज़ा रख लो, आइंदा साल के गुनाहों को मैं माफ़ फरमा दूँगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है कि वो एक माँ से भी ज़्यादा मेहरबान है अपने बंदों के ऊपर कि अभी किए भी नहीं है मैंने उनको भी माफ़ कर दिया। ये इस एक दिन के रोज़े की फजीलत। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको भी मैंने माफ़ कर दिया जो अरफा में, जो वहाँ पे रोज़ा रख रहे हैं उनको भी माफ़ कर दिया, क्योंकि अरफा वालों के लिए मना है वो ना रोज़ा रखें, जो हज पे जाए वो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो नहीं रोज़ा रखेंगे, जो घरों में वो रोज़ा रख के वो भी अपनी बख्शिश करवा सकते हैं, क्योंकि वो दुखी होते हैं कि हम क्या करें। तो एक तो इसका ये हो गया कि जहन्नुम से खलासी, इंसान का रोज़ा रखना उसकी बख्शिश का सबब बन गया। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो बड़ी अहम है, और वो ये कि एक यहूदी हज़रत उमर के पास आया था और उसने कहा था ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपकी किताब में एक आयत है, अगर वो हमारे ऊपर उतरती तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। तो हज़रत उमर ने पूछा वो कौन सी आयत है, उसने कहा सूरह माईदा की ये आयत, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतुकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत तमाम कर दी, तुम्हारे लिए इस्लाम को चूज़ कर लिया, उससे तुम्हारे लिए इस्लाम को एज दीन अल्लाह ताला ने पसंद फरमा लिया। तो ये तो वो दिन है, हम कहते ना इस्लाम एक नेमत है, जिस जिसको नेमत लगती है समझ लें ये वो दिन है जिस दिन ये नेमत तमाम हुई थी, जिस दिन ये मुकम्मल हुई थी, जिस दिन ये दीन पूरा का पूरा हमें मिल गया मुकम्मल हो के, ये इसकी सेलिब्रेशन है। अरफा का दिन जो है ये अक्सर लोगों को नहीं पता कि ये दिन था। तो हज़रत उमर ने फरमाया हम तो इसके ऊपर ऑलरेडी ईद करते हैं, क्योंकि ये वो दिन है ना जिस दिन के बस अब ईद है, और जुमे का भी नहीं था, जुमे का दिन हर वीक में ईद का दिन। तो और ये वो दिन है अरफा का दिन जिस दिन सबसे ज़्यादा शैतान जलील होता है और अपने सर में खाक डालता है, और इसलिए इतना जलील होता है, इधर आगे आ जाए, इधर आ जाए, इसलिए इतना जलील होता है क्योंकि जब वो देखता है कि अल्लाह ताला की बख्शिश इतनी ज़्यादा है तो वो कहता है मैंने तो इनको सारा वक्त बहकाया और देखो आज ये सारे बख्शे गए, मेरी तो सारी मेहनत पानी फिर गई। तो वो उस दिन बहुत ज़्यादा गमगीन होता है, बहुत जलील होता है, उस दिन खाक डालता है अपने सर में। ये वो इतना प्यारा दिन है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आप लोगों ने कहा है, बेहतरीन दुआ आराफा के दिन की दुआ है, ये दुआओं का दिन है। तो अब बाज़ लोग पूछते हैं ना, नौ ज़िलहज्जा का रोज़ा रखें या आराफा का दिन का रखें ना, और दुआएं कौन सी, नौ ज़िलहज्जा की या आराफा के दिन की? तो आराफा, जब लोग वहाँ पे आराफात में जमा होंगे, हमारे वो आराफा का दिन, चाहे वो हमारी आठ बन रही हो या नौ बन रही हो, जो भी बन रही होगी, उसको ही हम समझें कि आराफा का दिन ही हदीस में लफ्ज़ आया। तो हम उस दिन दुआ मांगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर कि बेहतरीन कलिमात जो मैंने कहे और मुझसे पहले अम्बिया ने कहे इस दिन के लिए, वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। उस दिन के बेहतरीन कलिमात ये हैं कि उस दिन आप ये कलिमात कहें और अल्लाह ताला से खूब खूब मांगें। जो चीज़ें आपको लगता है ना ये इम्पॉसिबल हैं, वो भी मांगें। जो आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा मैं मांग रही हूँ, ये कैसे मिल सकता है, जैसे एक दुआ है जो मुझे बहुत शर्म आती है मांगते हुए, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत की वजह से मैं मांग लेती, वरना मुझे शर्म आती जब भी मैं वो दुआ करने लगती हूँ कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस का सवाल है कि मुझे जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देना। जब ये दुआ मांगती हूँ तो फिर खुद ही हया आती है कि मैं क्या मांग रही हूँ और मेरा अमल क्या है। लेकिन जब ये देखती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्यों? इसलिए कि जिससे तुम मांग रहे हो उसकी अता की तरफ जब देखते हो ना, तो फिर कहते हो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जब अपने अमल की तरफ देखते हैं तो हाँ वाकई इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन हम अपने नहीं अमल की तरफ, जब उसकी अता और उसकी रहमत की तरफ देखते हैं ना, तो फिर लगता है कि वहाँ से कभी नाउम्मीद नहीं हो सकते। उसके लिए क्या मुश्किल है, वो चाहे तो अता कर दे, उससे किसने पूछना है। तो इसलिए दुआएं मांगे, और अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह ताला तो चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल कर ले, तुम्हें माफ़ कर दे, तुम पर मेहरबान हो जाए। तो अल्लाह ताला से हमने इस इन दिनों में खूब खूब दुआएं करनी है, खूब खूब इस्तगफार करनी है, बख्शिश मांगनी है, खूब खूब अल्लाह का जिक्र करना है, रोज़ा रखना है। और जो काम हम, ज़ाहिर है जो शुरू के अंदर जब हम सहरी के वक्त उठेंगे, उसके बाद हमने फजर पढ़ ली और उसके बाद हम बैठ के अपनी जो सुबह शाम के अज़कार हैं वो करें, कुरान करीम की तिलावत करें, और जितनी देर हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह उस वक्त तक इशराक का टाइम हो जाएगा, हम इशराक पढ़ेंगे वहीं बैठे हुए, हम मुसल्ले पे ही हैं। तो अब जब हमने इशराक पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको एक मुकम्मल हज और उम्रे के बराबर अजर मिलता है। तो हम घर बैठे हुए इस तरह से अजर कमाने का एक वो कर सकते हैं। इसी तरह सुन्नत रातिबा, जो 12 सुन्नतें हैं दिन की, उनको नहीं छोड़ना, क्योंकि जो ये सुन्नतें पढ़ता है उसका अल्लाह ताला जन्नत में घर तामीर कर देते हैं। तो कम से कम इन दिनों में हम मेक श्योर करें कि दो फजर की सुन्नतें, जोहर की चार पहले और दो बाद में, ठीक है, और उसके बाद मगरिब की दो सुन्नतें और उसके बाद इशा की दो सुन्नतें, ये हैं 12 रकात, ये आपने लाजमी पढ़नी, ये रातिबा हैं, ठीक है, चाहे आप बाकी नहीं भी पढ़ रहे लेकिन ये ज़रूर पढ़ें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफशव सलामा बैनकुम, अपने आपस में सलाम को आम करो और मिस्कीन को खाना खिलाओ, नरम बात करो, और फरमाया कि रात को उस वक़्त नमाज पढ़ो जब लोग सो गए। ये चार काम बताए कि ये कर लोगे ना तो सलामती से जन्नत में चले जाओगे, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जाने में। चार काम क्या हैं, सलाम, खाना खिलाना, नरम बात करना, इस ज़ुबान को नरम कर लें। ये जो नफल पढ़ने, ज़िक्र करने, ये आसान है, नरम बात करना मुश्किल है। तो ज़ुबानों को नरम कर लें, लोगों के साथ अच्छी तरह बात करें, वकूलु लिन्नासि हुस्ना, अच्छी तरह बात करो लोगों के साथ। तो इन दिनों में कम से कम ये हम करें कि हमने इन दिनों में अपनी ज़ुबान को, जब ज़ाहिर है ज़िक्र में बहुत वो होगी तो फिर ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल में भी रहेगी, कम बात करेंगे तो जाहिर है अच्छी फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह से दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमारी ज़ुबानों को नरम कर दे। तो ये चार काम कर लेंगे, और सहरी के लिए जब उठना है तो दो नफल पढ़ने में क्या मुश्किल है, दो भी पढ़ लिए तो तहज्जुद हो गई, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं आपने आठ ही पढ़े तो होगी, दो भी पढ़ लिए तो तहज्जुद गुजारों में तो शामिल हो जाओ। मोनी मैं आपको कहती आपने सूरह बकरा ही शुरू कर देनी है, चलो सूरह इखलास और सूरह नास के साथ ही पढ़ लो, हमारा नाम ही चलो लिखा जाए कि ये भी उठी थी और अल्लाह के आगे सजदा इसने किया था इस वक्त में जब सब लोग सो रहे थे, ये तो इससे स्टार्ट करें, दो से स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह ताला जब हम सहरी के लिए उठेंगे तो ये काम भी हम करेंगे। देखें जन्नत में जाना जो है ना, ये सिर्फ दुआओं से नहीं है, इसमें कोशिश चाहिए, ये सिर्फ ख्वाहिशात से नहीं होता। और जो इंसान नेकी, बड़ी नेकियां करना चाहता है ना, उसको चाहिए छोटी छोटी नेकियों के मौके ज़ाया ना करें। इनको ये ना समझे सलाम करना कौन सी ऐसी नेकी है और ये कौन सी ऐसी नेकी है। अगर आप चाहते हैं ना कि अल्लाह आपको बड़ी नेकी के मौके दे, तो पहले छोटी छोटी नेकियां शुरू करें, इनके मौक़ों को अवेल करें। और इन दिनों से ज़्यादा बढ़ के क्या दिन है जो स्पेशल दिन आ रहे हैं, इनमें हमने अपने लिए जन्नत के दरवाज़े खुलवाने हैं और जहन्नुम के बंद कराने हैं, जन्नत के खुलवाने हैं और जहन्नुम के बंद कराने हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप आठों दरवाज़े जन्नत के अपने लिए खुलवा लें या एक खुलवाएँ, आपकी मर्ज़ी है कि आप जहन्नुम के सारे दरवाज़े बंद करवा लें या एक करवाएँ, यह आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमारी इसके ऊपर है कि हम कितनी मेहनत करके अल्लाह को दिखाते हैं। अल्लाह ताला हमारी ये मेहनतें देखता है, उसने तो देखिए रहमत के ऐसे दरवाजे खोल दिए, एक साल अगले एक साल पिछले, गुनाहों की माफ़ी का वादा फरमा दिए एक रोज़े पे। सोचें कि वो कितना गनी है, वो कितना सखी है, वो कितना अता करने वाला है। कोई किसी को कह देना कि आप जी ये एक रात आप या एक दिन आप ये जॉब करें तो आपको डबल सैलरी मिलेगी, अगले महीने की भी दे देंगे, दो महीनों की सैलरी आपको मिलेगी, तो इंसान को बुखार भी होगा तो खड़ा हो जाएगा, कहेगा आज अगर मैं बीमार भी हूँ एक टांग पे भी खड़ा होना पड़े तो नहीं मैं आज ड्यूटी पे ज़रूर जाऊँगा, वो पता है दो महीने की सैलरी मिल रही है। तो अल्लाह ताला तो दो सालों के गुनाह माफ़ कर रहा है, कौन पीछे रह सकता है। तो अल्लाह ताला की अताएँ इतनी हैं और इन दस दिनों के अंदर इतनी ज़्यादा हैं, हम भी उनको लेने वाले बने, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इनको समेटने वाले बन जाएं। और हज़रत हफ्जा की शान में आता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तलाक़ दे दी थी हज़रत हफ्जा को, तो फरमाया था कि इनको वापस ले लें, अल्लाह का हुक्म है इनको वापस ले लें। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को इनकी दो बातें बहुत पसंद है, एक ये कयाम बहुत करती हैं और एक ये रोज़े बहुत रखती हैं। इसे पता चला अल्लाह ताला को कौन सी दो चीज़ें महबूब हैं, कयाम करना आपका और रोज़ा रखना। और कयाम किस में होता है? नमाज में। तो चाहे अब तहज्जुद के अंदर हो या दिन के टाइम हो, नमाज़ें नवाफिल हों, आपको पता है एक जो नफल इंसान जो पढ़ता है तो उससे अल्लाह ताला का कुर्ब मिलता है। फ़राइज़ के बाद क्या चीज़ है जो अल्लाह के कुर्ब के लिए? नवाफिल अदा करना। एक सजदा जो है, जब सजदे में इंसान जाता है तो सबसे ज़्यादा अल्लाह से करीब होता है। तो नवाफिल का एहतमाम, जो पढ़ सकते हैं जितने भी पढ़ सकते हैं दुहा के नफल पढ़ें। इसी तरह हम मस्जिदों को आबाद करें। हम देखें रमज़ान में हमारी मस्जिदें कितनी प्यारी आबाद होती हैं, इन दस दिनों में तो पता ही नहीं चलता कि ये भी कोई फजीलत वाले दिन है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इन दिनों की इंपॉर्टेंस, ना कभी स्कूलों कॉलेजों में ये बताया, ना कभी हमारे मीडिया में इस चीज़ की ज़्यादा पब्लिसिटी कभी की गई, कभी भी नहीं किसी ने बताया ही नहीं कि ये दिन भी कोई दिन होते हैं। लोग ईद की तैयारियों में या जानवर ख़रीदने में ये दिन गुजार देते हैं, ये नहीं उनको पता होता कि इन दिनों में नेकियां क्या करनी है। तो हमें इन दिनों की फजीलत को उजागर करना है, सबसे पहले अपने घरों से शुरू करेंगे, फिर औरों तक भी इस चीज़ को, पैगाम को पहुंचाएंगे। सहाबा कराम तो ये उसमें आता है इनके जो किस्से हैं कि ऐसे तैयारी करते थे इन दिनों की जैसे रमज़ान की तैयारी करते हैं। हम में से किसके घर में ऐसी तैयारी होती जैसे रमज़ान की तैयारी हो? हम यानी पहले से रमज़ान के लिए तो ये सोच लेते हैं कि हमने ये पढ़ना है, इतना कुरान पढ़ना है, इतना ये करना है, लेकिन इन दिनों की तो हमारे लिए कोई भी तैयारी ऐसी नहीं होती कि हम सोच लें कि नहीं इन दिनों का भी मैंने ऐसे अहतमाम करना है। तो इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा इन दिनों को स्पेशल समझ के अहतमाम करेंगे, और इन दिनों में वो जो चीज़ें हम पहले नहीं करते थे और छोड़ी थी और मामूली समझते थे, इंशाअल्लाह इन दिनों में हमने करनी है। हज़रत अली ने फरमाया था कि जिसने अपनी ज़िंदगी अव्वल ज़िंदगी के दिनों को ज़ाया कर दिया हो ना, उसको चाहिए कि आखिर उम्र में इनको कॉम्पेंसेट करे, इनका तदारुक करे नेकियां करके, ताकि उसका खात्मा बिलखैर हो जाए। जिस जिस को ये है ना कि मैं पहले नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था, बड़ी उम्र मैंने ज़ाया कर दी, तो अब कॉम्पेंसेशन के लिए तेज़ दौड़े। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने खौफ किया, जो डर गया, वो अव्वल रात चलने लगता है, यानी जिसको ये खौफ होता है ना मैंने मंजिल पे पहुंचना है, तो वो अव्वल रात में ही सफ़र शुरू कर देता है, और जो अव्वल रात में चलता है वो मंजिल तक पहुंच जाता है। फरमाया आगाह रहो, जान लो अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, सस्ता नहीं है, अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, और अल्लाह का सौदा जन्नत है। ये आसान नहीं है, इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, इसके लिए नफ्स को लगाम देनी पड़ेगी, इसके लिए उसको उठाना पड़ेगा कि नहीं ये करना है, मुझे जन्नत चाहिए। जन्नत आसान थोड़ी है। जब नफ्स कहे ये बड़ा मुश्किल है, हाय ये कैसे करूँ, बड़ी थक गई हैं, तो फिर खुद को उठाएं, जन्नत नहीं चाहिए तुझे, जन्नत चाहिए ना तो ये करना पड़ेगा। खुद को मनाएं, खुद को बागें दें, कोई नहीं करा सकता हमसे जब तक हम खुद ना तहिया कर लें कि हमने करना है। कितने भी लेक्चर सुन लें, मैं चली जाऊंगी, आप चले जाएंगे घर में, कौन आपसे कराएगा। हाँ, ये खुद को खुद मनाना पड़ेगा कि नहीं मुझे करना है। और फिर कुर्बानी, आपको पता है अफजल तरीन अमल है इन दिनों का, इन 10 दिनों में, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। और जो मैं आपको अभी बात बता रही थी, एक नमाज से दूसरी का अजर, और जो आपने हदीस शेयर करनी है जाके अपने घर के मर्दों के साथ ख़ास तौर पे, वो ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नहा धो के अपने घर से फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए निकला, उसको एक हज का सवाब अता किया जाता है। इतना बड़ा जाए, आप लोगों के लिए नहीं, लेकिन आप मोटिवेट तो कर सकते हैं, मगर इसके बाद घर जाके लड़ना नहीं शुरू कर देना कि उनके पीछे पड़ जाएं कि आज हम दर्स सुन के आ गए और अब आपने 5 नमाजों के लिए जाना है, अगली दफ़ा वो मना कर देंगे। तो इन दिनों में तो बिल्कुल ही नहीं झगड़ा करना जो आ रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह से मोटिवेट करेंगे, और दिनों में नहीं भी जाते, कम अज़ कम इन 10 दिनों में कोशिश के साथ जाएँ, एक हज का अजर मिल जाएगा। देखो वो वहाँ पर हज के लिए गए हैं, हम कैसे अजर पाएँ, सिर्फ नहा दो के घर से निकलना है फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए। जिन टाइम्स में आदमी घर हों, फजर और ईशा के लिए तो जा सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग भी साथ जाएँ। ईशा में उसी तरह मस्जिदों को आबाद करें जैसे रमज़ान में होती थी। और जो शख्स नमाज़े चाश्त अदा करने के लिए निकला, और कोई काम नहीं है उसको, सिर्फ चाश्त के लिए निकला, और ये सिर्फ वीकेंड पे हो सकता है, तो उसको एक उम्रे के बराबर सवाब अता किया जाता है। सुभान अल्लाह। और फरमाया ये वाली अब आप लोग भी कर सकते हैं, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज पढ़ना, उसका इंतज़ार करना कि दरमियान में कोई लघव बात ना हो। लघवियात क्या है? वो चीज़ें नहीं है जो गुनाह की हों, वो चीज़ें जो कि ना जिसका दुनिया का कोई फ़ायदा ना आखरत का कोई फ़ायदा है, बेकार की चीज़ें, इधर बैठ गए उधर बैठ गए, इधर फ़ोन मिला लिया, उधर चैटिंग कर ली, उधर फेसबुक देख लिया, उधर फ्लांग कर लिया, बस इधर उधर टाइम वेस्टिंग। जिसने दरमियान में ये नहीं किया, उसका ये अमल उसके लिए इलीजीन में लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। दो नमाजों के दरमियान कोई लघ काम नहीं करना, वैसे भी ये चीज़ है, लेकिन इन दिनों में ख़ास तौर पे हम इसका एहतमाम करें। अब जो मैं आपको बताने लगी हूँ, वो कुछ अज़कार बताने लगी हूँ, 5 अज़कार मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। अगर आप चाहें तो आप उनको लिख लें, इनकी तस्बीह एक एक इन 10 दिनों में तो ज़रूर करनी, वैसे तो हम तकबीरात पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन कम अज़ कम इन अज़कार को आपने रेगुलरली एवरी डे करना है, एक एक तस्बीह इनकी करनी है, ये कम अज़ कम है। आगे आपकी जितनी मर्ज़ी, देखें नेकी के काम में जितना भी इंसान आगे बढ़े, क्यों इसलिए आपको ये बता रही हूँ, बाज़ दफ़ा इंसान सोचता है अच्छा क्या करूँ, कौन सा जिक्र करूँ, अच्छा ये करूँ कि वो करूँ, जब आपके पास 5 अज़कार लिखे होंगे ना, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी कि ये मेरा होमवर्क है, मैंने ये करना है, ये होमवर्क के तौर पर समझ के करें। अच्छा, इनमें नंबर 1 पे वो है तीसरा कलमा। तीसरा कलमा क्या है, सब एक दफ़ा पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ठीक है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अच्छा, अब देखें ये जो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर है, ये जब आप 100 दफ़ा पढ़ेंगे तो 100 दफ़ा सुबहानल्लाह हो गया, 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 दफ़ा लाए, जो 100 दफ़ा सुबहानल्लाह कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 हज के बराबर इसको सवाब मिलता है। 100 दफ़ा सुबहानल्लाह कहने पे 100 हज के बराबर सवाब मिलता है। 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला ऐसे है कि अल्लाह के रास्ते में उसने 100 घोड़े दिए लड़ने के लिए। 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला ऐसे है कि औलादे इस्माइल में से 100 गुलाम इसने आज़ाद किए। एक गुलाम खरीदना क्या, एक कुर्बानी का जानवर खरीदना मुश्किल हो जाता है। तो 100 गुलाम आज़ाद करना औलादे इस्माइल में से, वो इसका अजर है। और 100 दफ़ा जिसने अल्लाह अकबर किया, तो इससे बढ़ के किसी और का अमल नहीं होगा जो कि कोई लेकर आए। तो तीसरा कलमा, और फिर सबसे बड़ी एक बात आपको बता दूंगी, तो उसके बाद तो कोई और रह ही नहीं जाती इससे बढ़ के बात, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کلام میں جتنی باتیں ہم کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ یہ چار کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. یہ چار کلمات اس محبوب کو محبوب ہیں، تو پھر تو ہمیں سب سے ہی زیادہ پیارے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یہ کلمات کائنات کی ہر چیز جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں. تو اللہ کو بھی سب سے محبوب یہی، اس کے رسول کو بھی سب سے زیادہ محبوب یہی کلمات، تو ہمیں تو خود ہی پھر محبوب ہو گئے. پھر دوسرا جو چیز آپ نے، دوسرا کلمہ کہنا ہے جس کی تسبیح آپ نے کرنی ہے، وہ ہے سبحان اللہ ہی و بحمدی. یہ کہنے سے کیا ہوگا، یہ جو کلمہ ہے بولنے والا، اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. سبحان اللہ ہی و بحمدی، ایک دفعہ بولیں سبحان اللہ ہی و بحمدی، کتنا آسان ہے نا، کتنا چھوٹا سا. اچھا پھر تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا، بہترین جو کلمہ ہے عرفہ کے دن والا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو بھی 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں کرنے کا ملتا ہے، 100 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے کسی اور کا عمل نہیں ہوگا سوائے جو اس سے بڑھ کے عمل کر کے آیا، اس سے بڑھ کے پڑھ کے آیا. تو یہ بھی اس کی ایک تسبیح آپ نے کرنی. پھر اسی طرح چوتھی چیز ہے درود شریف. درود شریف کی ایک تسبیح آپ کریں، اور درود شریف کا فائدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب اس دن وہ ہوگا جو جتنا زیادہ آپ پہ درود بھیجتا ہوگا، آپ کی شفاعت کا مستحق وہ ہوگا جو درود زیادہ بھیجنے والا ہوگا. اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ کام جو انسان دعا بھی نہیں کرتا نا، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس کے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اسی طرح پانچواں کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، 99 بیماریوں کا علاج اس کے اندر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ میں. تو یہ اپنا ایک وہ بنا لیں، استغفار تو ہم نے کرتے ہی رہنا توبہ. اور دیکھیں جو ہم نے سنا تھا نا اس میں، جو رمضان کی آخری 10 راتوں کے لیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تو یہ صرف وہ ان راتوں کے لیے نہیں ہے کہ بس ان میں ہی پڑھنا، اس کے بعد سارا سال کے لیے اس کاپی کو تو بند کر دیں. نہیں، یہ کسی بات بھی آپ پڑھیں، باقی دنوں کے لیے بھی ہے، خاص ان راتوں کے لیے تو تھا ہی، لیکن ابھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ان 10 دنوں میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی اس میں مسئلہ نہیں ہے پڑھنے میں. دیکھیں یہ جو بھی آپ نیکیاں کریں گے، آپ یہ کلمات پڑھیں، آپ نوافل ادا کریں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، آپ ان دنوں کو ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کے مطابق چلیں، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو ذرا ان دنوں میں بند کر دیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اب ہم کہیں کہ ویسے تو دیکھیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتی کہ جو ہے آپ ان دنوں میں نیکیاں کریں، کوئی خود سے نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ دن بڑے فضیلت والے ہیں، فضیلت والے ہوں گے لیکن اس کے اندر نیکی کرنی ہے، اس کی بھی تو کوئی دلیل چاہیے. تو ہر ایک چیز کی دلیل چاہیے نا، اسی طرح ان دنوں کی کیا دلیل ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اس سے بڑھ کے کوئی دن کا عمل نہیں ہو سکتا، کسی دن کی نیکی نہیں اس سے بڑھ کے ہو سکتی. یعنی اس سے یہ ایسے سمجھ لیں جو آپ کو نماز کے مارکس ان دنوں میں ملیں گے نا، وہ باقی دنوں میں چاہے جتنی بھی پڑھ لیں اتنے نہیں مل سکتے. جو یہ روزہ آپ ان دنوں کا رکھیں گے اس کے جتنے نمبر مل سکتے ہیں نا، وہ ان دنوں میں نہیں ملیں گے جو باقی دن. تو اس طرح سے یہ سمجھ لیں کہ اس کے مارکس بہت زیادہ ہیں، یہ آپ کو بہت زیادہ، یعنی تھوڑا عمل کر کے بہت زیادہ اس میں کمائی کر سکتے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم آج سے ارادہ کریں گے اس چیز کا کہ ہم نے ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا، اور اس دفعہ ان کو بہت پلاننگ کے ساتھ گزارنا ہے. اچھا، جن چیزوں سے ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، وہ سب سے پہلے تو یہ کہ سارے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، گناہ سے بچنا، گناہ کو چھوڑ دینا، یہ بھی ایک نیکی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، جب انسان ارادہ کرتا ہے کسی گناہ کا اور لیکن کرتا نہیں ہے، تو تب بھی اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے. تو جب ہم جو گناہ عام دنوں میں اگر ہم سے کوئی ہو رہا ہے لیکن اس کو چھوڑتے ہیں ان دنوں میں، تو ہماری ایک نیکی لکھی جائے گی، تو یہ بھی ایک نیکی کا یعنی طریقہ. دوسرے یہ کہ جس چیز سے پرہیز کرنا ہے، وہ جب آپ پہلی کا چاند دیکھ لیں گے، اس کے بعد ناخن اور بال نہیں کاٹنے، جسم کے کسی حصے سے بھی نہیں کاٹنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے۔ تو اب ایسا ہے کہ اگر کسی کا ناخن کوئی ٹوٹ گیا یا لٹک رہا ہے ناخن، یا کوئی زخم ہو گیا، بال کہیں سے صاف کرنے پڑ رہے ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں، مگر ادروائز نارمل حالات میں کوئی بھی بال یا ناخن نہ کاٹے۔ بال دھو سکتے ہیں، توڑ نہیں سکتے، کاٹ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے عید سے پہلے کوئی ہیئر کٹ کرانی ہے، یا آپ نے کوئی ویکس کرانی ہے، کوئی آپ نے تھریڈنگ کرانی ہے، کوئی ایسی چیز کرانی ہے، تو آپ 10 دن پہلے سے کریں، اگر آپ خود قربانی کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یعنی بعض عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ خود بھی اپنی طرف سے بھی قربانی کرتی ہیں، تو وہ پھر نہیں کر سکتی یہ ناخن اور بالوں کو کٹوانے کا کام۔ بعض دفعہ گھر کے سربراہ پوری فیملی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو پھر بیوی بچوں کو بال ناخن کاٹنے سے رکنے کی ضرورت نہیں، پھر وہ کاٹ سکتے ہیں اگر ہسبینڈ کر رہا ہے سب کی طرف سے۔ میں نے اس صورت میں کہا ہے کہ اگر بیوی خود، عورت خود اپنی طرف سے کر رہی ہے، الگ سے اپنی کر رہی ہے، تو پھر وہ بھی رکے گی، چاہے عورت ہے چاہے آدمی ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے ان دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ، جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں، یہاں پہ بات کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمانا، ہمارے لیے آسان فرما دینا یا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام اعمال کو قبول فرما دینا، اللہ ہمیں نیک نیت عطا فرما کہ ہم تیری خاطر یہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام اعمال کی ہمیں اجر سوائے جنت کے اور بخشش کے اور کوئی نہ ہو۔ اللہ جنت ہمیں عطا فرما دینا اور بخشش ہم سب کی فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، جو جو چل کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا اور جانا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو سنا ہے ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں جو جو بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ڈھانپ لینا۔ یا اللہ تعالیٰ جو یہ مجلس انہوں نے منعقد کی، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر شازیہ کو عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ جو آن لائن سننے والے ہیں، جو بعد میں سنیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کو ہمیں صحت عافیت کے ساتھ عطا فرمانا کہ ہم ساری یہ عبادات بہترین طریقے سے کر سکیں، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمانا، تو ہم سے کروا لینا، یا اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے کروا لینا اور بہت اجر ہمیں عطا فرمانا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين، امين يا رب العالمين۔